दिव्यों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। आज आर्य समाज का आठवां प्रिंसिपल है, एट प्रिंसिपल। मेरे साथ बोलिए, छोटा सा है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सिंपल मीनिंग है, इग्नोरेंस मस्ट बी डिस्पेल्ड एंड द नॉलेज मीन्स एक्यूजेशन ऑफ नॉलेज should be promoted by this society. आर्य समाज की बात होती है, वैसे तो सबकी करनी चाहिए, पर ये रूल्स आर्य समाज के, तो जो आर्य समाज के फॉलोअर हैं उनका काम है। दो चीजें हैं, अविद्या, जहां जहां इग्नोरेंस हो, इल्यूशन हो, उसको दूर करने की कोशिश होती रहनी चाहिए, और जहां जरूरत पड़े वहां विद्या की वृद्धि बढ़ानी चाहिए। ये यजुर्वेद का सुंदर मंत्र इसको कोट करता है, केतु कृण वन्न के तवोपेशो मर्या अपेशसे समुषद भीर जाययाः। सिंपल मीनिंग है, ईश्वर ने जो इग्नोरेंट है उनमें ज्ञान को स्थापित किया, और जो अनाड़ी है उनमें प्रकाश को, बुद्धि को स्थापित किया, जिससे कि हे मनुष्य, दोनों से तुम आगे बढ़ो, ज्ञान और बुद्धि से। दिव्यों सज्जनों, जो एजुकेशनलिस्ट हैं मॉडर्न, उनकी परिभाषा में, डेफिनेशन में, नेचर और नर्चर टू दो डिफरेंट थिंग होता है। नेचर जो जनरली इंडिविजुअल जब पैदा होता है उसके साथ इनग्रेंड होकर के आता है, जैसा आपकी सकल सूरत होगा, आपकी सोच समझ कैसे बनेगा, कुछ चीजें अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंट भी आता है, वो नेचर है जो आप बदल नहीं सकते हो। और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो नेचर आपके बढ़ता भी है, घटता भी है। अगर आगे जा करके ऐसा पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस रहा तो आपके जो नेचर है, अगर बुरे नेचर भी हैं, बुरे नेचर को फलने फुलाने वाले अगर ऐसा एटमॉस्फेयर रहा तो वो बढ़ेगा, अगर नहीं रहा वो दबा रहेगा। अच्छे नेचर है उसको फ्लोरिश करने के लिए अगर ऐसा अच्छे माहौल बना तो वो बहुत बढ़ेगा, अगर नहीं हुआ तो वो कम रहेगा, नेचर बना रहेगा। पर जो नर्चरिंग है वो एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, आउटसाइड पर डिपेंड करता है, कितना आप बाहरी दुनिया से जो आपके अंदर जाता है उससे हम नर्चर्ड होते हैं। यहीं से एजुकेशन वाले कहते हैं कि ये नर्चरिंग का काम एजुकेशन का है। जो बच्चा सीखता है बाहरी दुनिया में आने के बाद, कहीं से भी, मां बाप से लेकर स्कूल से, फ्रेंड से, दुनिया में किसी भी चीज से, एनवायरमेंट से, वो उसकी नर्चरिंग है। दो अलग अलग चीजें हैं, नेचर और नर्चर। पर जो वैदिक कंसेप्ट है, जो इंडियन कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनली, ये इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं करते। वैदिक विचार के अनुसार नेचर भी इट्सेल्फ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ नर्चरिंग। जो आज मेरा नेचर है वो कभी नर्चर था, मे बी इस लाइफ में या लास्ट लाइफ में, जो मेरे जिस तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने बाहरी दुनिया के साथ लिया, जिस तरह के डील किया, उन सबका जो होलसम रिजल्ट है वो मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस में बना रहता है। वही ग्रेजुअली, बस स्लोली और डेफिनेटली मेरे अंदर के नेचर को चेंज करता रहता है। जन्म के साथ जिसको हम इनग्रेंड कहते हैं, मां बाप की हेरिटेंस के रूप में मानते हैं, वो भी बहुत हद तक मेरे साथ आया हुआ चीजें हैं, जो मैंने पिछले जन्म में जिस तरह के मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जिस तरह का लाइफस्टाइल रहा, वो भी है। और मेरे जो मुझे जिस तरह के पेरेंट्स मिले वो पेरेंट्स भी उसी तरह का मिले जिस तरह के पिछले जन्म के कर्मों के कारण जिस तरह के माँ बाप मुझे मिलने चाहिए, जिस तरह के नेचर हेरिडेटरी जो जीन्स वगैरह आना चाहिए वो भी पहले से डिसाइडेड है। इसीलिए जो इसको आप आज नेचर कहते हैं वो आपकी पास्ट नर्चरिंग है, मे बी इन दिस लाइफ और लास्ट लाइफ में कहीं भी हो सकता है। बाकी रही जो नर्चर करने की एजुकेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि उसके बिना आप लाइफ में केवल इंस्टिंक्ट सोच लेकर के नहीं बढ़ सकते। ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, हम सब पढ़े लिखे हैं। पढ़ना लिखना नई चीजें जानना क्यों जरूरी है वो एक अलग बात है, पर ये जो पढ़ाई लिखाई कब से शुरू होती है आप मत सोचिए कि जन्म होने के बाद शुरू होता है। ये तो आप जिस दिन मां के गर्भ में आए तब से आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है इनडायरेक्टली। उसमें आपको फोर्सफुली आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब मां बाप बनने वाले होते हैं, बच्चा जब गर्भ में आता है या गर्भ आने के समय पर एट और अबाउट दोनों समय पर मां बाप की जिस तरह के माइंडसेट होता है, जिस तरह के लाइफस्टाइल होता है, उसका भी इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ता है, बच्चा उसी तरह से ट्रेंड होता रहता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने जो 16 संस्कार बनाया, संस्कार तो जानते हैं सैक्रमेंट्स, जैसे आप शादी करते हैं वो भी एक संस्कार है, मरना भी मरते समय जो रिचुअल होता है वो भी एक संस्कार है। जनरली हमें ओवरऑल आइडिया है कि जन्म होने के बाद संस्कार होते हैं, पर जन्म से पहले भी 3 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार इवन इन द फर्स्ट मोमेंट जब मां बाप ये सोचते हैं कि मुझे हमें एक बच्चा चाहिए, जब वो कंसीव करते हैं दैट मोमेंट ऑल्सो वी सेलिब्रेट आज गर्भाधान संस्कार। क्यों उसको भी क्यों संस्कार कराने की जरूरत थी, क्योंकि जब तक आप एक पॉजिटिव मोड में ना रहो, प्री प्लान ना करो, उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को ना बनाओ, आपको किस तरह की आत्मा चाहिए अपने शरीर अपने अंदर प्रवेश करने के लिए, अपने शरीर में व अपने घर में किस तरह की आत्मा बुलाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उस कंसीव के समय हमारा किस तरह की लाइफस्टाइल है, सोच है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मां बाप बनने के लिए सोच समझ के बनना। सोच समझ का अर्थ ये नहीं कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग बन गए, अपना घर हो गया कि नहीं, आप सेटल्ड हो गए कि नहीं, नेचुरली ये भी मैटर करता है, पर मैटर जो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए करता है कि आप मेंटली कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितनी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को कितना चेंज कर सकते हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छे माइंडसेट बनाइए, ये बड़ा जरूरी है। इसीलिए इसको हम संस्कार के रूप में काउंट करते हैं। आप इसको बड़े इजीली मत लेना, एक डिवाइन सोल आपके घर में प्रवेश करने जा रहा है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी एक्सटर्नली जितना जरूरी है इंटरनली भी उतना जरूरी है। आपकी खान पान सोच समझ, आपके घर के माहौल, वो सब ठीक होना चाहिए। जैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपके घर में माहौल कैसा भी रहा हो, आपकी घर की सामान कैसे भी इधर उधर पड़े हुए हो, जैसे भी हो, पर कोई गेस्ट आने को होता है तो आप तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, सब चीजों को सेटल करते हैं, आपस में भी संबंध ठीक रखते हैं। कम से कम गेस्ट के सामने तो लड़ना नहीं, बाद में कर लेना जो करना है, सामने तो मत करना, जो भी है आप एक तैयारी करते हैं। एक नॉर्मल गेस्ट 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए आता है या 1-2 दिन के लिए आता है, आप इतनी तैयारी करते हैं, पर आपके घर में एक पूरी की पूरी आत्मा को आप लाते हैं, आपकी हमेशा के लिए आपकी लाइफ के पार्टनर बने, उसके लिए हम मेंटली तैयारी करना जरूरी है। इसी को गर्भाधान कहते हैं। ये एक तरह का एजुकेशन की बिगिनिंग है। मां बाप एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन और उसके बाद या पहले जिस तरह के मेंटलिटी लेते हैं उसका इंप्रेशन बच्चे पर आता है। अगर हम झगड़ते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम, गलत सोच रखते हैं, हो सकता है फिजिकली हम करते नहीं करते, इवन माइंड में भी हमारा विचार आता है, वो ट्रांसफर होता है बच्चे उस आत्मा के माइंड में जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान देखिए देवियों सज्जनों, ज्यादातर बच्चों की जो अच्छाई या बुराई उनके अंदर बाई नेचर है, उनमें बहुत सारा कारण माँ बाप का व्यवहार कंसेप्शन के समय, कंसीविंग टाइम के पीरियड से ही होता है, उनका भी उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों के अच्छे फिजिकल मेंटल अच्छे या बुरा होने में। हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, हम दूसरों पर टाल देते हैं, पर यह बहुत जरूरी है। तो वहीं से बच्चे की एजुकेशन शुरू हो जाती है, नर्चरिंग शुरू हो जाती है और बच्चा आगे बढ़ता है। हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हर वो छोटी छोटी चीजें एजुकेशन होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद आप उसको धीरे धीरे खाना खिलाने से सिखाने से लेकर चलना फिरना, बाहर जाना, हर वो छोटी छोटी चीजें सीखता है। और ये क्या है? नॉलेज है। जितना ज्यादा नॉलेज, बिना नॉलेज के हम जी नहीं सकते। वो नॉलेज माँ के पेट से सीखे या बाहर आकर सीखे, नॉलेज बड़ी जरूरी होता है। ज्ञान, जब हम ज्ञान की बात करते हैं या स्वामी जी ने जब लिखा आर्य समाज के नियम में विद्या की वृद्धि, इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि जो साइंस या टेक्नोलॉजी है सिर्फ उसी की वृद्धि होनी चाहिए, वो भी वृद्धि होनी जरूरी है। ओवरऑल जो हमारे लाइफ में वो ज्ञान जो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है, जो हमें ये बताने में हेल्प करता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं किसको बढ़ाऊं अपने अंदर की, किसको कम करूं, आर्ट ऑफ लाइफ को सीखूं, ये भी विद्या है ना। विद्या ये भी है कि जब सराउंडिंग चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होता है, मैं उसके साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करूं। कल मैं अकेला था, बैचलर था, मेरी लाइफस्टाइल, शादी हो रहा है उसके बाद चेंज होगा क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जॉब करने जा रहा हूं, मेरे लाइफस्टाइल चेंज होगा। मैं एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी ज्वाइन करता हूं, अलग टाइप के लोग होंगे, पहले की तरह मैं सोच नहीं सकता, आपको एडजस्ट करना है। तो लाइफ में हर मोमेंट में आपको जो अलग अलग सर्कमस्टांसेस मिलता है उसके साथ अपने आप को कोप करने के लिए भी सीखने की जरूरत है, नॉलेज इसके लिए भी जरूरत है। नॉलेज इसके लिए भी जरूरत है कि मेरे लाइफ में जो आ चुके हैं व आने वाले जो डेंजर्स हैं उनके साथ मैं कैसे स्ट्रगल करूं और उनसे बाहर निकल कर आऊं। ऐसा तो नहीं कि लाइफ में कभी स्ट्रगल आएंगे नहीं या जो प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। ज्ञान इसके लिए भी जरूरी है कि मेरे रिलेशनशिप मेरा मेरे साथ, ये बहुत जरूरी है, हम अपनी चीजों को बहुत इग्नोर करते हैं। मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ कैसा हो, मेरे सराउंडिंग के साथ, मेरे फैमिली मेंबर के साथ, नेबरहुड के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एनमी के साथ, वर्क प्लेस में, दुनिया भर में कहीं भी मेरा संबंध कैसा हो, उसको भी ठीक करने या गलत करने के लिए मुझे ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान सिर्फ प्रूफ, जनरली जो धीरे धीरे हम सो एजुकेटेड लोग होते जा रहे हैं, हम सब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो डेवलप होता है ये है कि हम पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल के प्रोफेशन के साथ जोड़ते हैं ज्ञान को। और बहुत सारे लोग तो शायद जब से कमाने लगे तब से, उसके बाद पता नहीं बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक बुक कभी शुरू से आखिर तक कभी दो चार पेज पढ़े भी नहीं पढ़े, ये डाउट है। क्योंकि या तो पेरेंटिंग ऐसी रही है, पढ़ाई इसीलिए करो कमाने के लिए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वो बन जाओ, वो बन जाओ, बस कभी ये इंस्पिरेशन नहीं मिला कि पढ़ाई इसीलिए भी जरूरी है कि लाइफ को कैसे ठीक से जिया जाए, बाकी कैसे चीजें किया जाए, इन चीजों के बारे में भी पढ़ाई किया जाए, इसीलिए ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान का अर्थ ये भी नहीं है कि हम एक आदमी सब कुछ जानता है, कोई भी धरती में सब चीजें सब नहीं जान सकता। आप कितना भी किसी चीज के बारे में जानते हैं, मोस्ट ऑफ चीजों के बारे में हम सब इग्नोरेंट हैं। ज्ञान की एक बड़ी खराब चीज है विद्या की, विद्या तो फायदा देती है नेचुरली जब आपके पास नॉलेज होता है, बहुत बुरा भी करता है क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो। विद्या का भी बड़ा साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है कि वो हमें नॉलेज भी हमें इग्नोरेंस में डाल देता है। कौन सा इग्नोरेंस इल्यूशन में कि मैं सब जानता हूं। जब आप थोड़ा सा जानने लग जाते हैं या किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर होने लग जाते हैं, हमें लगने लगता है कि दुनिया सब मुझे जानता हूं। हो सकता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ जानते हैं पर आपको साइकिल में पंचर करना नहीं आता है। हो सकता है कि आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर में आप एक्सपर्ट हो पर आपकी मेडिकल साइंस में जीरो नॉलेज हो सकता है। यह एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि मैं किसी एक चीज को जानता हूं पर बाकी चीजों के बारे में मैं नहीं जानता हूं। कोई भी व्यक्ति सब चीजों के बारे में जान नहीं सकता, और अगर कोई ये दावा करे कि मैं सब जानता हूं या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो वो स्टुपिडिटी है। आपने एक सुंदर स्टोरी सुनी होगी जोक के रूप में, कभी दो चार ज्ञानी विद्वान लोग, कोई प्रोफेसर है, कोई दूसरे फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तीन चार फ्रेंड है, घूमने गए कहीं, जैसे आप लोग मिलके जाते हैं, तो किसी देश में राज्य में घूमने गए तो लेख में उनको नाव में बैठ के अंदर तक गए घूमने के लिए, नाव वाले से बातचीत करते रहते थे, किया जी तुम्हें बातचीत किया, कहां रहते हो, क्या घर है, बच्चे कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हो, पूछा अंग्रेजी आती है तुम्हें, नहीं अनपढ़ आदमी हूं चलाता हूं, आजकल तो अंग्रेजी के बिना कोई जिंदगी नहीं चलती है, कैसे चलाते हो, जी साहब क्या करें मूर्ख आदमी है, नहीं नहीं सीखनी चाहिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है, अच्छा सर। दूसरे ने पूछा आपको मैथ वगैरह आती है कुछ, बातचीत में चला, मैथ का प्रोफेसर रहा होगा, बोले नहीं साहब बस ये पैसा गिन लेते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, लाइफ में मैथ थोड़ा आना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है कि आपको मैथ का ज्ञान नहीं है। पूछा बताओ तुम्हारे राज्य के कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोला साहब कुछ पता नहीं है, गरीब आदमी दिन भर काम करते हैं कहां से पता, ये गलत बात है, पता होना चाहिए, कुछ जनरल नॉलेज होना चाहिए, कैसे जियोगे, ठीक है। सब सब साहब लोगों ने खूब सुनाया ये नहीं आता ये नहीं आता ये आना चाहिए, और नाव चलाते हुए लेक के बहुत बड़े लेक के बीच में चले गए, एक बड़ा तूफान आ गया अचानक, तो तूफान आया तो नाव डिगमगाने लगा, पानी में बड़े बड़े लहरें आने लगे, समुद्री लेक था। नाव वालों ने पूछा साहबों आप लोगों को तैरना आता है किसी को, बोले नहीं हम तो भाई पढ़े लिखे शहरी हमें तैरना नहीं आता है, बोले आपकी जिंदगी तो बिल्कुल ही नहीं बचने वाली है। नाव वाले नाव डूबा तो नाव वाला तैर के किनारे पर आ गया, बाकी मैथ वाले अंग्रेजी वाले सब डूब गए। देवियों सज्जनों, हर एक के पास कोई ना कोई ज्ञान है, उस ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, और मेरे पास सब ज्ञान हो भी नहीं सकता, ये मैं डिमांड करूं कि जो मैं जानता हूं वही ज्ञान, जो दूसरे जानते हैं वो ज्ञान नहीं है, ये गलत है। आप सब यहां नीचे बैठे हैं, अपने अपने विषय में सब अपने अपने विषय में मास्टर हैं, कोई बहुत मास्टर नहीं है तो ग्रेजुएट है, सब जानते हैं, ज्ञानी है अपने अपने विषय में, कोई ज्ञान में बहुत बड़ा है, कोई कर्म में बहुत बड़ा होगा। इसका अर्थ नहीं कि मैं बोलता हूं तो मैं ही ज्ञानी हूं और जो सुनता है कम ज्ञानी है, जो बोलता है उसको मौका मिला है बोलने के लिए इसीलिए बोलता है, सुनने वालों में बहुत होंगे जो इससे अच्छा बोल सकते हैं, ये समझना जरूरी है। हर एक में ज्ञान है, गुण है, अपने अपने विषय में एक्सपर्टीज है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी किसी ना किसी विषय में उसकी एक्सपर्टीज है, और वो उसका ज्ञान है, वो उसका कला है, वो उसकी एक्सपर्टीज है। मैं नहीं जानता हूं या मेरे ज्ञान से मुझे ज्यादा पैसा मिलता है इसलिए मैं बड़ा ज्ञानी, और किसी के ज्ञान से उसको कम पैसा मिलता है कम ज्ञानी, पैसे से ज्ञान को आंकना बड़ी बुरी चीज होती है। जैसे नाव वाले के ज्ञान को प्रोफेसर लोगों ने गलत तरीके से आंका क्योंकि उसके पैसे कम है, गरीबी है, नहीं हर एक के ज्ञान की कीमत है। हम सब सब विषय में ज्ञानी नहीं हो सकते पर कोशिश करना चाहिए जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम इकट्ठा कर सकें जीने के लिए, लाइफ को समझने के लिए। जब मैं लाइफ को समझने कहता हूं उसमें मैं क्या हूं यह भी समझने के लिए, जो ज्ञान की जो कल्मिनेशन है, जो सुप्रीम नॉलेज है, वो ये है कि जो खुद को समझता है। खुद को समझने को विद्या, हमारे उपनिषदों में विद्या को दो तरह से बांटा, बोला एक विद्या एक अविद्या, एक श्रेय एक प्रेय। बोले विद्या क्या है ना, जिसमें खुद को जाना जा सके वो ज्ञान है, और खुद के अलावा बाकी सबको जानना वो सेकेंडरी ज्ञान है। तो अगर खुद को भी जानने के लिए थोड़ी कोशिश करना, ये विद्या का कल्मिनेशन होता है, सबसे चरम चीज होती है। संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है, जो थोड़ा बहुत जानने के बाद भी बहुत सारे लोगों की आदत है, बहुत सारे कहीं या मोस्ट ऑफ लोगों की, तो किसी भी विषय में थोड़ा बहुत हल्का जान लिया तो अंदर ये सेंस आ जाता है कि मैं सब जानता हूं या बहुत जानता हूं। इन्हीं लोगों के लिए संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है, ये भर्तृहरि का नीति शतक है। नीति शतक का श्लोक कहता है, यदा किंचित ज्ञोहम द्वीपैव मदांध समभवम्। मुझे कुछ पता नहीं था, जब थोड़ा थोड़ा पता चला किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए हम यहां बैठे हैं, धर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो जिंदगी भर अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहा, कभी इन चीजों के प्रति इंटरेस्ट नहीं रखा, कभी मंदिर जाने लगा, सत्संग जाने लगा, कुछ सुना, इंटरेस्ट हुआ तो एक आधा बुक किताबें वगैरह पढ़ने लगा, तो उसको अब ये सोच आने लगा मैं सब जानता हूं। जब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सब जानता हूं, मैं वैसे ही अकड़ने लगा कोई शराब पिया हुआ हाथी हो। फिर क्या हुआ, सर्वज्ञो तदा सर्वज्ञोस्मि त्यभवद अवलिप्तम मम मन। मैं उस शराबी मदमस्त हाथी के तरह हर जगह अकड़ने लगा ये सोच के कि मैं तो सभी जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। फिर एक दिन कोई मिल गया, यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम। तब कभी किसी पार्टी में सेमिनार में इधर उधर कोई एक मिल गया, एक ज्ञानी आदमी, मैं भी अपना प्रवचन झाड़ने लगा तो सामने वाला समझदार व्यक्ति ने थोड़ी बहुत मुझे करेक्ट किया, ये गलत है, ऐसा नहीं। फिर बाद में और बहुत सारे लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठने से पता चला कि मेरा ज्ञान तो चुल्लू भर पानी से भी कम है, समुन्दर तो बहुत बड़ा चीज है। फिर क्या फील हुआ, तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत। तब मेरी वो जो सब कुछ जानने का जो अकड़ था वो वैसे ही दूर हुआ, जैसे किसी को बुखार हो और मेडिसिन खाने पर बुखार कम हो जाता है, वैसे ही मेरी वो सब कुछ जानने का सोच खत्म हुआ, मैं समझा मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। ये बहुत जरूरी है, ये श्लोक हम सबके अंदर कहीं ना कहीं हमारे कर्नर में रहता है कि मैं जो करता हूं सबसे बढ़िया हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। इसीलिए विद्या ग्रहण करने का पहला जो जरूरी चीज है, अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना। थोड़ा सा जानने के बाद हम बहुत सारे इग्नोरेंस को दबा देते हैं, खुद के दबा देते हैं। जैसे ही वो कॉरपोरेट सेक्टर में एक वर्ड यूज करते हैं, हेड इन द सैंड थिंकिंग, अपने रेत में अपनी सर को छुपा करके बोले कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। अपनी गलतियों को, कमियों को छुपा करके, खुद से छुपा करके ये सोचना कि पब्लिक को पता नहीं है। तो विद्या होने का पहला स्टेज क्या होता है, ये एक्सेप्ट करना कि मेरा नॉलेज, कितना भी मैं सच में पढ़ा लिखा हूं, मेरे नॉलेज का एक लिमिटेशन है, और कोई दूसरा मेरे से भी कितना भी मूर्ख हो, कम पढ़ा लिखा हो, कैसा भी फील्ड का हो सकता है उसके बातचीत में मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए, कोई ज्ञान की बातें मिल जाए, कितना सुनी सुनाई बातें हो उनमें से कोई चीज मुझे मिल जाए। पर उसकी पहली शर्त क्या है, अपने आप को, जब तक हम अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हमारे ज्ञान हमारे अंदर आ भी नहीं सकता। प्रश्नों उपनिषद में एक कहानी आती है, छह ज्ञानी विद्वान लोग, ज्ञानी विद्वान इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि हमें बहुत कुछ आता है और यह भी पता है कि हमें बहुत कुछ नहीं आता है। ज्ञानी होने का पहला जो मार्क है, जो साइन है, कि जिसको पता हो कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। छह लोग ढूंढते, बहुत कुछ शास्त्र पढ़े लिखे थे, पर उनको तब भी अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था। सेटिस्फेक्शन नहीं था मतलब वो ज्ञानी थे, उनको पता था हमारा ज्ञान लिमिटेड है, उससे सब प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, सब ज्ञान हमें नहीं मिला है। वो ढूंढते रह रहे थे। एक गुरुकुल के आचार्य महर्षि पिप्पलाद थे। पिप्पलाद का नाम उन्होंने सुना था, बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, पूरे देश में उनके नाम की चर्चा थी, बहुत ज्ञानी माने जाते थे। शाम को उनके पास पहुंचे, शाम को गुरुकुल में संध्या हो चुकी थी, खाने की तैयारी थी, छह पहुंचे। जनरली इस गुरुकुल में संध्या के बाद शाम को गुरुजी बैठते हैं, वहां पब्लिक लोग आते हैं, तब बच्चों का ज्यादा क्वेश्चन आंसर, दिन भर पढ़ाई होती है, शाम को पब्लिक डीलिंग होती है। पब्लिक को जिसको जो क्यूरियोसिटी हो, क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है। ये छह जने भी पहुंचे। महर्षि पिप्पलाद से पूछा कि हमने तो बहुत कुछ शास्त्र पढ़ा है, ये भी पढ़ा, 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 पर संतुष्टि नहीं मिली, अभी भी लगता है कुछ हमारे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अभी भी अनआंसर्ड है, तो हम आपके पास आए हैं, अगर आप हमें कुछ बता सकें तो हमारी कृपा होगी, आपकी कृपा होगी। पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि क्या क्वेश्चन है, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या ज्ञान है जिसको जान लेने पर और कुछ जानने को बाकी न रहे। पिप्पलाद ने कहा ऐसा करो, शाम का समय है, खाना पीना खाओ, रेस्ट करो, अगले दिन सुबह मैं आपसे बात करूंगा। खा पीकर रेस्ट किया, अगले दिन सुबह जब आए, पिप्पलाद ने कहा देखिए बंधु, आप ऐसा करो, एक साल तक यहां रुको, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारियों की तरह जीवन जियो, एक साल के बाद पूछना, मुझे अगर आता होगा तो बता दूंगा। कहानी यही खत्म होती है। लोग रुकते हैं क्योंकि वो रियली क्यूरियस थे, जानने की इच्छा थी, एक साल तक पूरी जो ज्ञान पाने की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन कर। पर पिप्पलाद का जो वाक्य था वो अंडरलाइन करने वाला, मुझे अगर आता होगा तो मैं बता दूंगा, ये अंडरलाइनिंग सेंटेंस है। यही सीखना है हम पढ़े लिखे लोगों को, हम एजुकेटेड लोगों को, ये बोलने की जो साहस चाहिए, गट चाहिए, मुझे अगर पता है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, अगर पता होगा तो मैं हेल्प कर दूंगा। प्रॉब्लम है कि हमें दुनिया के, मैं हो सकता है बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं पर मैं हर चीज में मेरी एक्सपर्टीज होगी, डॉक्टरी को छोड़कर हो सकता, बहुत सारे लोगों को तो अपने प्रोफेशन छोड़ के बाकी सब में एक्सपर्टीज है। पिप्पलाद कहते हैं मुझे अपने विषय में भी कितना पता मैं नहीं जानता, एक साल दो तुम भी यहां मैं तैयारी करो, मैं भी अपनी तैयारी करूं, समझ में अगर मेरा ज्ञान होगा तो बता दूंगा, अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक बात है। देवियों सज्जनों, ये जरूरी है कि हम अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करें। जब तक मैं अपने इल्यूशन में डूबा रहता हूं, मुझे कोई विद्या की वृद्धि नहीं करनी है, अविद्या का नाश भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, बहुत जोर देते हैं स्वाध्याय पर। अरे जो स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, रोज कुछ ना कुछ पढ़ो, रोज कुछ ना कुछ पढ़ो, जरूरी नहीं बुक पढ़ो, किसी से सुनो, पढ़ो, देखो, कुछ अंदर कुछ बाहर का ज्ञान लो। तैतिरीय उपनिषद में जब बच्चों का ग्रेजुएशन हो जाता है यूनिवर्सिटीज से, 14-15 साल की पढ़ाई के बाद जब वो मास्टर्स होकर निकलते हैं तो उनका कन्वोकेशन भारत में कहते हैं, संस्कृत में हमारे वैदिक परंपरा में उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं, अमेरिका में आप ग्रेजुएशन बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यहां तो फिफ्थ ग्रेड के बच्चे के भी ग्रेजुएशन होता है, सेवेंथ का भी होता है। ग्रेजुएशन का मतलब जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके बाद जो एक समावर्तन उपदेश होता है, जो ग्रेजुएशन का जो सरमन्स होता है, जो चांसलर या वाइस चांसलर देता है, तो तैतरीय उपनिषद में उसकी पूरी एक लिस्ट है कि जब आप ये गुरुकुल से पढ़ के जाओगे तो आप किन किन चीजों को ध्यान रखना। उसकी पहले 3 लाइन यही है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ये फर्स्ट 3 एडवाइसेस थे कि बेटे सत्य को सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, मतलब जो राइट है वही आचरण करना, और स्वाध्याय के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, घर में कुछ ना कुछ रोज पढ़ना, जरूरी नहीं वो पढ़ाई जो हमने पढ़ा के भेजा है, नहीं, लाइफ के किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। हो सकता है कि तुम फिजिसिस्ट हो, मौका मिले तो बॉटनी भी थोड़ा पढ़ लेना, फायदा करेगा कंपैरेटिव स्टडी करने के, लाइफ में उसको एनालाइज कर सकते हो। खाली उतना नहीं, आगे जाकर उसी तैतरीय उपनिषद में स्वाध्याय पर इतना, स्वाध्याय विद्या की वृद्धि, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, एक पूरा का पूरा चैप्टर लिखते हैं। क्या कहते हैं, रीतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, धमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च। थोड़ा मीनिंग बता दूं फिर आपको सुनने में अच्छा लगेगा, कि अपने रीत व्यवहार करो, राइट प्रैक्टिस करो, पर स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ना, प्रवचन मतलब जो पढ़ा उसको शेयर करना। शेयर करने की जरूरत क्या है, दूसरों की एनलाइटनमेंट के लिए नहीं, खुद के लिए। जब तक जो पढ़ा वो आप शेयर नहीं करोगे, आपकी ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, ज्ञान में पॉलिश नहीं होगा, अभी नर्चरिंग नहीं होगा। जब मैं कुछ चीजें समझता हूं, उस समझे हुए चीजों को जो मैं बताता हूं, उस समय बताने के लिए मेरी अंदर की क्लैरिटी और ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी ना हो, सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग घंटों बोलते हैं, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों, बोलने वाला ही कुछ क्लियर नहीं है। समझाने इसीलिए कहते हैं, पढ़ना जो जाना उसको किसी ना किसी को बताओ, बताने से क्लैरिटी आता है, इसी को कहते हैं प्रवचन। लर्न एंड शेयर योर लर्निंग, स्वाध्याय एंड प्रवचन। तो आप करते रहो, सत्य भी बोलो पर पढ़ाई का प्रचार करते रहना। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमिति सत्यवचाराथितर, तप इति तपो नित्य पौरुषिष्ठः, स्वाध्याय प्रवचने वैति नाकमौद्गल्यः, तथि तप तथि तप। क्या मीनिंग है, रीत की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस राइट बट विथ लर्निंग एंड टीचिंग द स्क्रिप्चर्स। पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाने का अर्थ नहीं कि किसी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाने लगो, जरूरी नहीं है, किसी को शेयर करो, घर में बच्चों को, पति या पत्नी को, जो भी फ्रेंड्स है, जो भी आप जानते हो, उसको शेयर करने से आपकी चीजें ज्यादा मजबूत होता है। प्रैक्टिस ट्रूथ, सत्य बोलते हो, तुम्हें लगेगा मैं तो सच बोलता हूं, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, हो गई मेरी सिद्धि, बोले नहीं, सत्य भी बोलो पर सीखो और सिखाओ, क्योंकि सत्य बोलने के लिए भी आपके लिए कुछ ज्ञान तो होना चाहिए ना। ऑस्टेरिटी का पालन करो पर स्वाध्याय प्रवचन के साथ, सेल्फ रिस्ट्रेंट करो स्वाध्याय प्रवचन के साथ, ट्रैंक्विलिटी की प्रैक्टिस करो स्वाध्याय प्रवचन के साथ, यज्ञ करो स्वाध्याय प्रवचन के साथ, अग्निहोत्र करो सुबह शाम जो आप यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय प्रवचन के साथ, अतिथियों की सेवा करो पर स्वाध्याय प्रवचन के साथ, दूसरों के प्रति दया भाव रखो पर स्वाध्याय प्रवचन के साथ, सोशल वर्क करो पर स्वाध्याय प्रवचन के साथ, बच्चे पैदा करो पर स्वाध्याय प्रवचन के साथ, संसार में सारे अच्छे काम करो पर स्वाध्याय प्रवचन के साथ। इसमें एक झगड़ा है, झगड़ा है कि मतलब आर्गुमेंट है। एक ऋषि ने कहा कि सत्य फर्स्ट है, सच सबसे ऊपर है, सत्य बोलना जरूरी है, बाकी चीजें सेकेंडरी है, ये स्वाध्याय प्रवचन सेकेंडरी चीजें हैं। ऐसा सत्यवाची नामक ऋषि ने अपने आर्गुमेंट दिया। एक दूसरे ऋषि हैं तपोनित्य ऋषि, उन्होंने कहा नहीं, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो तपस्या की, अपने शरीर और मन को कष्ट सहने की आदत डालना, ये सबसे बड़ा काम है। हर व्यक्ति को ये पहले फोकस्ड करना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी। मुद्गल के बेटा नाक ने कहा नहीं, स्वाध्याय और प्रवचन ही सबसे फर्स्ट है। ये जो पढ़ता है, जो ज्ञान अर्जन करता है, वो ज्ञान अर्जन ही तप है, ज्ञान अर्जन ही सत्य है, ज्ञान अर्जन ही यज्ञ है। अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं, बाकी सब झूठे हो जाते हैं। जब ज्ञान हो तभी तुम्हारी सब चीजें अच्छी होगी। कहने का भाव है, हमारे शास्त्रों में विद्या अर्जन करना, नॉलेज को बढ़ाना, वृद्धि करना, स्वामी जी लिखते हैं विद्या की वृद्धि और इल्यूशन या इग्नोरेंस को डिस्पेल करना, कितना इंपॉर्टेंट दिया जाता था। हर व्यक्ति को उपदेश था, रोज कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहना। पढ़े कैसे, पढ़ने की तरीका क्या है ज्ञान अर्जन करने का? जनरली जो हम नॉर्मल वे में पढ़ते हैं कि आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ें, ये बहुत जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं, रोज कुछ ना कुछ पढ़ें, मेक ए रूटीन हैबिट। जैसे आप रोज नाश्ता करते हैं, बाथरूम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रोज कुछ ना कुछ एक पेज पढ़ें या 10 पेज पढ़ें या बुक पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ना। न्यूज़पेपर और मैगजीन की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल चीजें पढ़ने की नहीं, वो तो एंटरटेनमेंट है, कुछ ज्ञान की बात है, सीखने की चीजें पढ़ना। न्यूज़पेपर को काउंट नहीं करना, वो अलग है, वो भी पढ़ो, जरूरी है, इससे थोड़ा टाइम पास होता है। दुनियादारी में पार्टी में बैठे तो कोई बात तो होनी चाहिए ना डिस्कस करने की, कि आज एस्ट्रोस वालों ने जीता कि किसने जीता, ट्रंप ने क्या बोला, ये टाइम पास एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है लाइफ में। लाइफ में कुछ उतरने के लिए कुछ सीख पढ़ना जरूरी है, रोज पढ़ो। नंबर टू, क्वेश्चन पूछने की नेचर होना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोगों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्वेश्चन पूछते नहीं है क्योंकि अंदर उस तरह का ट्रेनिंग नहीं बना है, कुछ भी बोल दो सब सही है, मैं यहां बोल के चला जाऊं, जी जी ये गलत है ये सही है, आचार्य जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला, मन खुश हो गया, यहां से उठ के पहुंच गए जी दुर्गाबाड़ी में, पंडित जी ने ठीक उल्टा बोल दिया, जी पंडित जी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, सब तो अच्छे ही है, तो फिर बुरा तो तुम्हारे अलावा और कौन होगा जब सभी अच्छे हैं। क्वेश्चन पूछना सीखना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, और वही ले जो आपके अंदर से कन्विक्शन है कि ये सही है। हो सकता है आप रॉन्ग हो, पर आपके कन्विक्शन होना चाहिए। आप जब ये आदत डालते हैं ना कि मुझे वही लेना जो मुझे मंजूर है, मेरा कन्विक्शन मानता है, एक ना एक दिन आप गलत भी होंगे ना सही रास्ते पर आ जाएंगे। पर इस नेचर के साथ आप जीते हैं, कोई कुछ भी बोले सब अच्छा है, जिंदगी भर लाइफ में कभी सच्चाई आ भी नहीं सकती है। और उसके लिए जरूरी क्या है, क्वेश्चन पूछने की आदत। आप सामने पूछे ना पूछे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। सामने वाले को पूछ नहीं सकते सिविलिटी के कारण, सोशल और कुछ कारण है, खुद जाकर के रिसर्च करे, सर्च करे, पता लगाते रहिए। सालों लग सकता है, महीनों लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है, अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। 24 घंटे कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में मत रहिए, तो हमेशा इल्यूशन में ही हम मर जाएंगे, सब अच्छा बोल बोल के, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये अमेरिकन सोसाइटी में ये बड़ी अच्छी बात है, वेस्टर्न सोसाइटी में हम रहते हैं, उनके बहुत सारी चीजें सीखते हैं पर अच्छी चीजें कम सीखते हैं। इस वेस्टर्न सोसाइटी का एक बड़ा अच्छा गुण है, वो बचपन से बच्चों में डालते हैं क्वेश्चन पूछने का। जहां तुम्हें लगता है कि ये मेरे समझ में बाहर है उसको पूछना, अगर लगता है गलत है उसको बोलना, प्यार से बोलना, झगड़ने के लिए नहीं। उसका रिजल्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी में हर फील्ड में ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग जो हर मामले में आगे हैं, उसका एक ही रीजन है कि उनके अंदर ज्ञान को एक्सेप्ट ना करने की एबिलिटी है। जो मुझे मिला आई शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट, आई नीड मोर मोर एंड मोर, फॉर दैट आई हैव टू आस्क, आई हैव टू कन्फ्रंट। ये जो कन्फ्रंटिंग नेचर हमारे इंडियन कम्युनिटी में बचपन से ही दबा दिया गया, माँ बाप ने दबाया, बड़ों को सवाल नहीं पूछते हैं, स्कूल में दबाया, टीचर से कहा चुप, बदतमीजी करते हो टीचर के पूछ के, और हमारे गुरुओं के मंदिर जाओ उन्होंने दबाया, नास्तिक को सवाल पूछते हो, तो हम उस तरह की अपनी माइंड को तैयार कर दिया, सवाल नहीं पूछना, जो बोलते मान जाओ सब अच्छा है। उसने बोला कौआ बगुला है, हो सकता है भाई, दिख तो नहीं रहा, क्या फर्क, वो बाबा जी को दिखता होगा, क्यों सवाल उठाते हो, सवाल मत पूछो, हम आदत डाल चुके हैं। ये दिन में सूरज उगता है, बाबा जी ने बोला नहीं चंद्र उगता है, हो सकता है चंद्र उगता हो, क्यों सवाल उठाऊं, क्यों भाई, तुम्हें तो नहीं दिखता, बाबा जी ने बोला कुछ कहा अच्छी चीज होगा सच होगा, मैं क्यों सवाल पूछूं, मतलब सब होगा मैं क्यों पूछूं। पर दूसरी चीज है कि सवाल पूछने के अंदर आदत होनी चाहिए, और जो ज्ञान मिला उसको एक्सपैंड करें और रिपीट करें, अगेन एंड रिपीट करें, दूसरों को सिखाए, लाइफ में इंप्लीमेंट करें। लास्ट में कंक्लूजन, ज्ञान की जो ट्रेडिशनल वे में ज्ञान कैसे मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री को अपनी पत्नी वाइफ को बताते हैं। देखिए प्रवचन जरूरी नहीं क्या बाजार में जाकर करें, अपने घर में अपने स्पाउस से भी बात कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी मैत्रेयी को बताते हैं, अपनी वाइफ को, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिधासितव्य मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। यहां वो बात कर रहे हैं खुद को जानने का, पर जरूरी नहीं खुद को जानने के लिए ये प्रोसीजर अपनाएं, लाइफ में कोई भी चीज जानने के लिए ये तीन प्रोसीजर है। पहले पढ़ें सुने, मतलब जानने की, बाहरी दुनिया से ज्ञान को अंदर लेने की जो भी तरीका है आप पढ़ के ले सकते हैं, सुन के ले सकते हैं, जाने। फिर मंतव्य, उसको माइंड में रिफ्लेक्ट करें, उसके बारे में सोचें, विचारें, अगर जमा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो डाइजेस्ट जबरदस्ती मत करवाइए मेडिसिन का के, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो मत करिए, जबरदस्ती नहीं, रिफ्लेक्ट करिए, अगर समझ में आ गया, दिमाग में उतर गया, पर निदिधासितव्य, उस पर फिर मेडिटेट करिए लाइफ के, उसको पूरी तरह उसमें डूब जाइए, और जब आप पूरी तरह उस सच्चाई को पी गए, अपने साथ आत्मसात कर लिए, फिर दूसरों को भी बताइए, प्रवचन करिए, साक्षात्कार करिए, ये ज्ञान के चार तरीके हैं। तो ये जो हमारा आर्य समाज के आठवां नियम, ये कहता है हर व्यक्ति हर समाज जीवन में विद्या की वृद्धि अविद्या का नाश के लिए कोशिश करना चाहिए, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सीखते रहिए और सीखते रहिए, जो जितना ज्यादा सीखते रहेंगे उनके अंदर की क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी, उनके प्रॉब्लम्स तो उतने ही होंगे पर प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास बाकियों से बहुत ज्यादा होगा। इन्हीं चीजों के पास बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।